एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसने न जाने कितने लोगों को छुआ है, सोचने पे मजबूर किया है,
हाँ
और शायद अपनी जिंदगी को थोड़ा अलग नजरिए से देखने की हिम्मत भी दी है।
बिल्कुल, हम बात करें एलिजाबेथ गिलबर्ट की मशहूर संस्मरण ईट प्रे लव, वन वुमन सर्च फॉर एवरीथिंग अक्रॉस इटली इंडिया एंड इंडोनेशिया।
ईट प्रे लव,
हाँ, और ये किताब सिर्फ एक सफरनामा नहीं है, है ना? ये खुद की तलाश की एक गहरी और कह सकते हैं बहुत ईमानदार कहानी है।
और ये तलाश आज भी उतनी ही मौजू है, मुझे तो लगता है शायद पहले से भी ज्यादा।
अक्सर ऐसा होता है ना कि बाहर से सब ठीक लगता है, अच्छी नौकरी, अपना घर, सामाजिक दायरे में प्रतिष्ठा, शायद शादी भी, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन सा लगता है, एक बेचैनी कि भाई कुछ तो है जो गायब है, कुछ अधूरा सा।
बिल्कुल सही कहा, और ये किताब उसी एहसास से शुरू होती है। ये उस खालीपन को भरने, बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर खुद को फिर से गढ़ने और ये समझने की कहानी है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि आखिर मिलती कैसे हैं। ये संतुलन, आत्मखोज और सबसे बढ़कर खुशी को एक सचेत चुनाव बनाने की यात्रा है।
तो इस यात्रा पर हमें ले जाने वाली लेखिका एलिजाबेथ गिलबर्ट कौन है? क्या वो कोई आध्यात्मिक गुरु हैं या मनोवैज्ञानिक, कुछ ऐसा?
नहीं, दिलचस्प बात यह है कि वो इनमें से कुछ भी नहीं है, कम से कम इस किताब में तो नहीं। एलिजाबेथ गिलबर्ट एक जानी मानी अमेरिकी लेखिका और पत्रकार हैं।
अच्छा।
ईट प्रे लव से पहले भी वो GQ, द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन जैसे बड़े प्रकाशनों के लिए लिख चुकी थी।
हाँ, मैंने सुना है।
और उनकी दूसरी किताबें भी प्रशंसित हुई थी। मतलब कहानी कहने का हुनर तो उनमें पहले से था।
लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी ताकत शायद यही है कि वो कोई विशेषज्ञ बनकर उपदेश नहीं दे रही है ना?
सही बात है।
वो खुद अपनी कहानी की नायिका है, एक आम आधुनिक महिला जो अपने जीवन के एक बड़े संकट से गुजर रही है। उनकी आवाज में एक सच्चाई है, एक ईमानदारी। वो अपनी कमजोरियों, अपने डर, अपनी गलतियों को बिना किसी पर्दे के सामने रखती हैं। ये किसी गुरु का ज्ञान नहीं, बल्कि एक जीते जागते इंसान का तजुर्बा है।
ये बात बिल्कुल सही है। और हाँ, ये भी मानना होगा कि उनकी पृष्ठभूमि एक अमेरिकी महिला होना, जिसके पास एक साल तक दुनिया घूमने के आर्थिक साधन थे,
हाँ, वो तो है।
वो एक तरह का विशेषाधिकार है जो शायद हर किसी के पास ना हो। इस पहलू पर किताब की आलोचना भी हुई है, ये भी सच है।
बिल्कुल, ये एक जरूरी नुक्ता है ध्यान में रखने के लिए। लेकिन फिर भी जिस तरह के भावनात्मक तूफान से वो गुजरती हैं, जो सामाजिक दबाव होते हैं, अंदरूनी कश्मकश,
हाँ,
तलाक का दर्द, अकेलेपन का डर, अपनी पहचान खो देने का एहसास, ये भावनाएं तो किसी भी पृष्ठभूमि के इंसान को अपनी सी लग सकती है ना?
बिल्कुल लग सकती हैं।
शायद यही वजह है कि ये किताब दुनिया भर में इतनी पढ़ी और पसंद की गई।
निश्चित रूप से। तो किताब का सार क्या है अगर हम देखें? कहानी शुरू होती है एलिजाबेथ यानी लिज के जीवन के एक मुश्किल दौर से।
हाँ,
उनका तलाक हो चुका है और उसके तुरंत बाद एक और रिश्ता, वो भी बुरी तरह टूट जाता है। वो पूरी तरह बिखर चुकी हैं, भावनात्मक रूप से बिल्कुल टूट चुकी हैं।
और फिर वो बाथरूम वाला सीन है ना, एक रात वो अपने बाथरूम के फर्श पर रोते हुए जिंदगी में पहली बार पूरी शिद्दत से ईश्वर से या किसी ऊंची शक्ति से मदद मांगती हैं।
हाँ वही, और यहीं से उनकी यात्रा का बीज पड़ता है। वो फैसला करती हैं कि वो अगले एक साल सिर्फ खुद पर ध्यान देंगी, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगी और ये पता लगाएंगी कि वो असल में क्या चाहती हैं।
और इस खोज के लिए वो तीन अलग अलग देशों का सफर करती हैं।
हाँ,
है ना?
तीन देश। इटली, जहाँ वो जीवन के भौतिक सुखों, खासकर खाने के जरिए आनंद को फिर से पाना सीखती हैं, वो है ईट वाला हिस्सा।
अच्छा।
फिर भारत, जहाँ वो एक आश्रम में रहकर आध्यात्मिकता, ध्यान और अनुशासन के जरिए अपने मन को साधना सीखती हैं, ये प्रे है।
और तीसरा
इंडोनेशिया, बाली, जहाँ वो इन दोनों चरमों के बीच संतुलन बनाना और प्यार को एक नए नज़रिए से देखना सीखती हैं, वो लव वाला हिस्सा।
तो किताब का मुख्य तर्क, मतलब जो सेंट्रल आइडिया है, वो यही है कि सच्ची खुशी और आत्मसंतुष्टि सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आती, जैसे शादी, करियर, पैसा, इनसे।
हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। गिलबर्ट का अनुभव ये दिखाता है कि असली संतुष्टि के लिए अंदर झांकना पड़ता है।
अंदर झांकना।
हाँ, खुद को समझना पड़ता है, अपनी भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतों को पहचानना पड़ता है, और फिर हिम्मत करके अपने जीवन को अपने सच्चे मूल्यों के हिसाब से ढालना पड़ता है।
आसान नहीं होता होगा ये?
नहीं, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। इसमें मेहनत लगती है, चुनाव करने पड़ते हैं, ये एक प्रोसेस है।
और इस यात्रा की संरचना भी दिलचस्प है। आपने बताया 108 अध्याय।
हाँ, पूरी किताब में 108 छोटे छोटे अध्याय हैं। और ये संख्या संयोग नहीं है, ये हिंदू और बौद्ध परंपरा में इस्तेमाल होने वाली जपमाला के 108 मनकों का प्रतीक है।
अच्छा।
जो ध्यान और एक यात्रा का संकेत देता है।
ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
हाँ, और ये 108 अध्याय तीन मुख्य खंडों इटली, भारत और इंडोनेशिया में बराबर बंटे हुए हैं। हर खंड में 36 अध्याय।
तो चलिए इस यात्रा के पहले पड़ाव इटली से शुरुआत करते हैं, ईट वाला हिस्सा।
हाँ बिल्कुल, इटली।
तो जब लिज इटली पहुंचती हैं, उनकी हालत कैसी होती है भावनात्मक रूप से?
बिल्कुल टूटी हुई, गहरी निराशा, चिंता, अपराध बोध, सब कुछ हावी है। उनका लक्ष्य है आनंद को फिर से महसूस करना, वो भी बिना किसी गिल्ट के। और इटली अपनी संस्कृति, अपने खाने, अपनी भाषा के साथ इसके लिए एकदम सही जगह लगती है।
वो इतालवी भाषा सीखना शुरू करती हैं। ये सिर्फ भाषा सीखना या कुछ और भी?
ये सिर्फ एक भाषा सीखना नहीं, ये खुद को अभिव्यक्त करने का एक नया जरिया खोजने जैसा है, एक नई आवाज पाना। और हाँ, खाना, वो पिज्जा, पास्ता, जलाटो, हर चीज का भरपूर लुत्फ उठाती हैं।
बिना वजन की चिंता किए?
हाँ, बिना वजन बढ़ने की चिंता किए। ये उनके लिए सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि जीवन के सरल सुखों को गले लगाने और आत्म देखभाल का एक तरीका है।
यहाँ वो एक बहुत खूबसूरत इतालवी जुमला सीखती हैं, दोल्चे फार नियंते। इसका मतलब क्या बताया था आपने?
इसका मतलब है कुछ ना करने की मिठास।
कुछ ना करने की मिठास,
वाह।
हाँ,
आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम हमेशा कुछ ना कुछ करने, प्रोडक्टिव होने के दबाव में रहते हैं। दोल्चे फार नियंते हमें याद दिलाता है कि कभी कभी बस रुक कर, बिना कुछ किए, सिर्फ होने का, पल का आनंद लेने में भी एक गहरा सुख है।
ये आलस नहीं है?
नहीं, ये आलस नहीं, बल्कि जीवन को महसूस करने की कला है।
वाह, ये तो सचमुच आज के समय में बहुत जरूरी सीख है। इटली में वो दोस्त भी बनाती हैं शायद?
हाँ, कुछ साथी यात्री, कुछ स्थानीय लोग जो उन्हें इस जीने की कला में, इस डोल्चे फार नियंते में मदद करते हैं।
तो इटली का अनुभव उन्हें क्या सिखाता है संक्षेप में?
इटली उन्हें सिखाता है कि अपने शरीर की जरूरतों का सम्मान करना जरूरी है, जीवन के भौतिक सुखों का आनंद लेना ठीक है, और खुद पर थोड़ी नरमी बरतना भी जरूरी है। ये एक तरह से आत्म पोषण का पड़ाव है,
खुद को पोषित करना।
हाँ, जो उन्हें आगे की कठिन यात्रा के लिए तैयार करता है।
और आगे की यात्रा उन्हें ले जाती है भारत, बाहरी आनंद से आंतरिक अनुशासन की ओर। खंड 2, प्रे। यहाँ का माहौल तो बिल्कुल अलग होगा।
बिल्कुल, दिन और रात जैसा फर्क। भारत में वो एक आश्रम में रहने आती हैं, जिसका लक्ष्य है आध्यात्मिकता की गहराई में उतरना, ध्यान लगाना सीखना और अपने मन के शोर का सामना करना।
ये इटली के पिज्जा पास्ता से तो बहुत अलग दुनिया होगी।
हाँ, बहुत अलग।
और ये आसान नहीं होता उनके लिए, जैसा आपने कहा। वो बताती हैं कि ध्यान में बैठना कितना मुश्किल है।
हाँ, बहुत मुश्किल। उनका मन लगातार भटकता रहता है, अतीत की बातें, चिंताएं, अपराध बोध सब उमड़ पड़ते हैं। वो अपने मन को एक बुरे पड़ोस जैसा कहती हैं, जहां हमेशा हंगामा मचा रहता है।
ये मंकी माइंड वाली बात है ना, जो इधर उधर कूदता रहता है?
हाँ बिल्कुल वही। मंकी माइंड या बंदर मन, ये योग और ध्यान परंपरा का एक जाना पहचाना शब्द है। इसका मतलब है हमारा वो मन जो एक विचार से दूसरे विचार पर, एक चिंता से दूसरी चिंता पर उछलता कूदता रहता है, ठीक एक बंदर की तरह, शांत नहीं बैठता।
तो भारत में लिज का एक बड़ा संघर्ष इसी बंदर मन को साधने का है।
हाँ, यही मुख्य संघर्ष है। आश्रम का जीवन भी बहुत अनुशासित होता है। सुबह शायद 4 बजे उठना।
4 बजे?
हाँ, फिर घंटों ध्यान करना, मंत्र जाप, सेवा यानी आश्रम के काम करना, ये सब आसान नहीं।
इस सफर में कोई उनकी मदद करता है, कोई गाइड?
हाँ, यहाँ उनकी मुलाकात रिचर्ड नाम के एक टेक्सस निवासी से होती है। वो थोड़े सख्त लगते हैं, लेकिन बहुत समझदार हैं और लिज के लिए एक अनौपचारिक गुरु की तरह बन जाते हैं।
अच्छा, रिचर्ड फ्रॉम टेक्सस?
हाँ वही। वो लिज को खुद को माफ करना सिखाते हैं, उनके भावनात्मक घावों को कुरेदते हैं ताकि वो भर सकें। रिचर्ड उन्हें दिखाते हैं कि आध्यात्मिकता सिर्फ शांति पाना नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंधेरे का सामना करना भी है।
ये तो बहुत गहरी बात है। तो भारत का पड़ाव उन्हें क्या देता है? क्या वो ध्यान में महारत हासिल कर लेती हैं, एकदम शांत हो जाती हैं?
देखिए, महारत तो शायद नहीं, लेकिन वो शांति के कुछ पल अनुभव करना सीख जाती हैं। वो एक नियमित आध्यात्मिक अभ्यास विकसित करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण, वो खुद को और दूसरों को माफ करना सीखती हैं और अपने अंदर की एक गहरी आवाज, एक आंतरिक मार्गदर्शन से जुड़ना महसूस करती हैं। ये पड़ाव आत्म अनुशासन और आत्मक्षमा का है।
इटली का आनंद, भारत की आध्यात्मिकता। अब बारी आती है संतुलन की। तीसरा पड़ाव इंडोनेशिया, बाली। खंड 3, लव, या कह लें बैलेंस। यहाँ उनका लक्ष्य क्या है?
यहाँ उनका लक्ष्य है इटली के सुख और भारत की शांति के बीच एक संतुलन साधना। जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना, और हाँ, प्यार को एक और मौका देना,
लेकिन एक नए स्वस्थ तरीके से।
बिल्कुल, एक नए स्वस्थ तरीके से।
बाली में उनकी मुलाकात कुछ दिलचस्प लोगों से होती है ना? एक तो वो बुजुर्ग चिकित्सक हैं केतुतलियर।
हाँ, केतुतलियर। वो एक पारंपरिक बालिनी हीलर हैं, बहुत ज्ञानी और मजाकिया भी। लिज उनसे सालों पहले एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट के दौरान मिली थी।
अच्छा, पहले मिल चुकी थी।
हाँ, और केतुत ने भविष्यवाणी की थी कि वो बाली वापस आएंगी। अब लिज उनसे जीवन जीने की कला, संतुलन और आध्यात्मिकता के बारे में सीखती हैं। केतुत उन्हें सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता सिर्फ ध्यान में बैठना नहीं, बल्कि दुनिया के साथ खुशी खुशी जुड़ना भी है।
और एक महिला चिकित्सक वायन का भी जिक्र है।
हाँ, वायन नूरिया सिंहा। वो एक सिंगल मदर हैं और मुश्किलों से जूझ रही हैं। लिज उनकी मदद करने का फैसला करती हैं और उनके लिए घर खरीदने में मदद करती हैं।
अच्छा,
ये अनुभव उन्हें सेवा, करुणा और मदद करने की स्वस्थ सीमाओं के बारे में सिखाता है। कई बार हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हमारी सीमा कहाँ है, कितना करना ठीक है।
ये भी एक जरूरी सीख है। और फिर आता है प्यार का पहलू,
फिलिप।
हाँ, फिलिप एक ब्राजीलियाई व्यवसायी। उनके साथ लिज का एक रिश्ता पनपता है। ये लिज के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि तलाक के बुरे अनुभव के बाद वो दोबारा किसी रिश्ते में पड़ने
डरती हैं।
हाँ, अपनी आजादी खोने और फिर से चोट खाने से बहुत डरती हैं।
ये डर तो बहुत स्वाभाविक है किसी के लिए भी। वो इससे कैसे निपटती हैं?
फिलिप के साथ वो धीरे धीरे एक स्वस्थ रिश्ते का मतलब सीखती हैं। वो सहनिर्भरता, जिसे अंग्रेजी में कोडिपेंडेंसी कहते हैं।
हाँ।
जहाँ हम अपनी पहचान और खुशी दूसरे में खो देते हैं।
हाँ।
और स्वस्थ अन्योन्याश्रय यानी इंटरडिपेंडेंस के बीच का फर्क समझती हैं।
स्वस्थ अन्योन्याश्रय मतलब एक ऐसा रिश्ता जहाँ दो लोग साथ होते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन अपनी अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता और अपनी आंतरिक शक्ति बनाए रखते हैं।
वो एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर नहीं होते।
नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन को समृद्ध करते हैं, एक टीम की तरह।
समझ गई।
बिल्कुल, बाली में लिज यही संतुलन साधना सीखती हैं, अकेले रहने की जरूरत और किसी के साथ जुड़ने की चाहत के बीच, आनंद, आध्यात्मिकता और प्रेम के बीच। जैसा कि केतुत कहते हैं।
हाँ, क्या कहते हैं?
प्यार के लिए कभी कभी संतुलन खोना भी संतुलित जीवन जीने का हिस्सा है।
वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात कह दी, प्यार के लिए संतुलन खोना।
हाँ, कि संतुलन कोई सख्त चीज नहीं है।
तो इस पूरी यात्रा से, मतलब इटली से भारत से इंडोनेशिया तक, कुछ मुख्य विषय या संदेश क्या उभर कर आते हैं?
देखिए, सबसे पहला और सबसे अहम संदेश तो है संकट के बाद खुद को फिर से खोजना और अपनी सच्ची पहचान पाना। किताब दिखाती है कि जब जीवन बिखरता है तो वो एक मौका भी होता है ये देखने का कि सामाजिक भूमिकाओं, पत्नी, बेटी, पेशेवर वगैरह के पीछे असली मैं कौन है।
ये बात तो बहुत मायने रखती, खासकर हमारे समाज में, जहां अक्सर हमारी पहचान दूसरों की उम्मीदों से बंधी होती है।
दूसरा बड़ा विषय क्या है?
वो है सांसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति के बीच संतुलन,
बैलेंस।
हाँ, बैलेंस।
गिलबर्ट का सफर दिखाता है कि एक भरा पूरा जीवन जीने के लिए दोनों जरूरी हैं। ना तो सिर्फ दुनियादारी में खो जाना ठीक है, ना ही दुनिया से पूरी तरह कट जाना। एक समग्र, मतलब होलिस्टिक नजरिया जरूरी है।
और तीसरा, दुख और भावनात्मक चोट से उभरने की प्रक्रिया, हीलिंग प्रोसेस।
बिल्कुल, ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं देती, बल्कि दिखाती है कि हीलिंग एक सफर है जिसमें हिम्मत, ईमानदारी और लगातार कोशिश लगती है। भागने से बात नहीं बनती, सामना करना पड़ता है।
हाँ, और इसी से जुड़ा है वो एकांत और अकेलेपन वाला फर्क, है ना?
हाँ, सॉलिट्यूड और लोनलीनेस का फर्क समझना। जानबूझ पर चुना गया एकांत खुद से जुड़ने के लिए जरूरी हो सकता है, जबकि अनचाहा अकेलापन दुख देता है। किताब दिखाती है कि अकेले होने और अकेला महसूस करने में अंतर है।
और एक और बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगी, बाहरी सफलता की सीमाएं।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। अच्छी नौकरी, पैसा, शोहरत, ये सब होने के बावजूद इंसान अंदर से खाली महसूस कर सकता है। असली संतुष्टि अंदर से आती है।
बिल्कुल, और अंततः ये किताब फिर से शुरू करने के साहस की कहानी है, एक तरह से रेजिलियंस की।
हाँ, लचीलापन दिखाने की, डर के बावजूद अज्ञात में कदम रखने की, हिम्मत की कहानी है।
इस किताब में कुछ पंक्तियां तो ऐसी हैं जो सीधे दिल पर असर करती हैं और मतलब सोचने पर मजबूर कर देती हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे वो विचार कि विनाश एक उपहार है, विनाश परिवर्तन का मार्ग है।
सुनने में शायद अजीब लगे लेकिन
हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि जब पुरानी चीजें टूटती हैं, पुरानी पहचान बिखरती है, तभी नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बनती है। हर अंत एक नई शुरुआत का मौका हो सकता है।
और ये वाला खुशी व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम है, या जैसा लिज कहती हैं, मैं दुख पर खुशी चुन रही हूँ।
हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। खुशी सिर्फ हालात पर निर्भर नहीं करती, ये हमारा रोज का चुनाव है, हमारा अभ्यास है, हमें इसके लिए काम करना पड़ता है।
ये पैसिव नहीं है, एक्टिव चॉइस है।
बिल्कुल, और बाली से केतुत का वो ज्ञान, प्यार के लिए कभी कभी संतुलन खोना भी संतुलित जीवन जीने का हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन हमेशा सीधा सपाट नहीं होता,
परफेक्ट नहीं होता।
हाँ, कभी कभी रिश्तों के लिए, प्यार के लिए थोड़ा जोखिम उठाना, थोड़ा डगमगाना भी जरूरी है। परफेक्ट संतुलन शायद एक भ्रम हो।
और इटली का वो डोल्चे फार नियंते, कुछ न करने की मिठास, आज की हमेशा व्यस्त रहो वाली संस्कृति में ये कितना जरूरी है कि हम रुकें, सांस लें और बस होने का आनंद लें।
बिल्कुल, बिना किसी एजेंडा के। और आखिर में वो आत्म करुणा का भाव, जब लिस खुद से कहती है मुश्किल पलों में, मैं यहां हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मुझे परवाह नहीं है अगर तुम्हें पूरी रात रोने की जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी।
अपने लिए खड़ा होना,
हाँ, खुद के प्रति ये नरमी, ये सहारा बनना कितना जरूरी है।
ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, प्रेरणादायक हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। हर कोई तो दुनिया घूमने नहीं निकल सकता, है ना?
ये बहुत वाजिब सवाल है, और किताब का असली मकसद शायद यात्रा करने के लिए उकसाना नहीं, बल्कि उस यात्रा के पीछे की भावना को पकड़ना है। पहली चीज जो हम कर सकते हैं वो है अपने जीवन का एक छोटा सा ऑडिट करना।
ऑडिट?
हाँ, मतलब ईमानदारी से खुद से पूछना, क्या मैं जहां हूं वहां खुश हूं? क्या मेरा जीवन मेरे मूल्यों से मेल खाता है? अगर नहीं, तो छोटे छोटे कौन से बदलाव संभव हैं? बड़े नहीं, छोटे।
और फिर वो माइक्रो क्वेस्ट का आइडिया भी अच्छा है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल, जरूरी नहीं कि हम इटली जाएं ईट के लिए, हो सकता है हम घर पर ही कोई नई रेसिपी ट्राई करें, या हफ्ते में एक बार बिना किसी अपराध बोध के अपनी पसंद की चीज खाएं।
और प्रे के लिए?
प्रे के लिए शायद रोज सुबह 10 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें, या कोई प्रेरणा देने वाली किताब पढ़ें, या शायद बस प्रकृति में थोड़ी देर टहल लें।
छोटे छोटे कदम।
हाँ, लव बैलेंस के लिए शायद अपने किसी पुराने दोस्त को फोन करें, या किसी स्थानीय सामाजिक काम में थोड़ा समय दें। मुद्दा बड़े जेस्चर का नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आनंद, शांति और जुड़ाव के छोटे छोटे पल खोजने का है।
इसे अपनी होममेड ईट प्रे लव यात्रा कह सकते हैं।
बिल्कुल, अपनी खुद की घर पर बनी हुई यात्रा।
हाँ, और एकांत को अपनाना, दिन में थोड़ा समय सिर्फ अपने साथ बिताना, बिना फोन, बिना टीवी, अपनी अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करना।
हाँ, और खुशी को एक अभ्यास बनाना, रोज उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना जो हमारे पास हैं, छोटी छोटी चीजों में सुंदरता खोजना, खुद को और दूसरों को छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ करना सीखना,
और मुश्किल भावनाओं से भागना नहीं, उनके साथ बैठना सीखना। जब उदासी, चिंता या डर महसूस हो तो उसे स्वीकार करना, महसूस करना, ये भावनात्मक मजबूती देता है ना?
हाँ बिल्कुल, इमोशनल रेजिलियंस। और अंततः सफलता की अपनी परिभाषा बनाना, समाज भले ही पैसे और पद को सफलता माने,
पर शायद हमारे लिए सफलता का मतलब आंतरिक शांति हो,
या अच्छे रिश्ते हो, या अपने मन का काम करना हो, अपनी परिभाषा गढ़ना।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा और किताब से सबसे बड़ा सबक ये है कि हम अपने जीवन की कहानी के लेखक खुद हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारे पास हमेशा ये चुनाव होता है कि हम उनका जवाब कैसे दें और अपनी कहानी को कैसे मोड़ दें।
हाँ, वो एजेंसी हमारे पास है।
व्यक्तिगत बदलाव और पुनरुत्थान हमेशा संभव है।
और मेरे लिए सबसे अहम बात ये समझना था कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि सफर जीने का तरीका है। ये एक सक्रिय चुनाव है, एक रोज का अभ्यास, और जीवन के अलग अलग हिस्सों, काम, आराम, रिश्ते, आध्यात्मिकता, इन सबको संतुलित करना, एकीकृत करना ही असली मायने में जीना है।
तो अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। कोई व्यक्ति घर बैठे अपनी ईट प्रे लव यात्रा कैसे डिजाइन कर सकता है? आज ही अपनी जीवन में थोड़ा और आनंद, थोड़ी और आंतरिक शांति, या थोड़ा और संतुलित जुड़ाव लाने के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है?
इस पर सोचिएगा जरूर, छोटा सा कदम ही सही।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।